श्रीमद् भागवतम 10/20/18 डेट 13 मार्च 2015 स्पीकर तत्वेता प्रभु
नाम गुणहीन प्रत्यंशा रहित छा यद्यपि गुणिनी आकाश में जिसमें ध्वनि जैसा निश्चित गुण पाया जाता है अभाग प्रकट हुआ व्यक्ते व्यक्त जगत के भीतर गुण व्यति करे भौतिक गुणों के पारपारिश क्रियाओं के क्रियाओं वाले अगुणवान भौतिक गुणों से संबंध न रखने वाले पुरुष परम पुरुष यथा जिस तरह अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा जब इस आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हुआ जिससे गर्जना करने का गुण या तो वह सामान्य धनुष से भिन्न था क्योंकि वह प्रत्यंशा पर टिका हुआ नहीं था। इस प्रकार जब भगवान इस जगत में जो कि भौतिक गुणों की पारपरिश क्रिया स्वरूप है प्रकट होते हैं तो वे सामान्य पुरुष से भिन्न होते हैं क्योंकि वे समस्त भौतिक गुणों से मुक्त तथा समस्त भौतिक दिशाओं से स्वतंत्र होते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की टीका इस प्रकार है, कभी कभी बादलों की गर्जना के अतिरिक्त इंद्रधनुष निकलता है जो प्रत्यंशा रहित धनुष जैसा प्रतीत होता है। सामान्यतया धनुष वक्र स्थिति में इसलिए बना रहता है कि क्योंकि उसके दोनों सिरे प्रत्यंशा डोरी द्वारा बंधे रहते हैं, किंतु इंद्रधनुष में कोई ऐसी प्रत्यंशा नहीं होती, फिर भी वह आकाश में बहुत अच्छी तरह टिका रहता है। उसी प्रकार जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे सामान्य व्यक्ति की तरह प्रकट तो होते हैं किंतु वे किसी भौतिक अवस्था पर टिके नहीं होते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा जो कि बाह्य शक्ति के बंधन से मुक्त है प्रकट होते हैं। जो सामान्य प्राणी के लिए बंधन है वही भगवान के लिए स्वतंत्रता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु नवैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तः मध्येव मे विशतो मानसराजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात्पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते आनंदलीलामय विग्रहाय हेमं मदिव्या सविसुंदराय तस्मै महाप्रेमरस प्रदाय चैतन्यसुंदराय नमो नमस्ते चैतन्यसुंदराय नमो नमस्ते।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दसम स्कंद विश्वाध्याय जो सुखदेव गोस्वामी वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बारे में वर्णन करते हैं, विशेषकर वर्षा ऋतु में जो सिद्धांत के द्वारा प्रस्तुतिकरण हो रहा है, हम कई श्लोकों से सुनते आ रहे हैं। तो आज के श्लोक में मुख्यतः भगवान की प्रकृति और भगवान जो परम पुरुष ईश्वर है उनके बारे में वर्णन किया गया है। प्रथम लाइन में जो प्रकृति है, पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और आकाश के बारे में जो वर्णन हुआ है। जब बारिश का समय आता है और बारिश होता है, उसी समय बादलों के टकराने की आवाज़ के साथ एक इंद्रधनुष रेखा बन जाती है आकाश में। प्राय गांव में ज़्यादा दिखने को मिलता है, यहाँ शहर में तो किसी के पास समय भी नहीं है आकाश की तरफ देखे ऊँचा होकर, तो होते हुए भी नहीं देख पाते हैं। जो इंद्रधनुष तीन रेखाएँ तीन कलर में प्रकाशित होता है, बहुत बड़ा विशाल मात्रा में आकाश में, इस इंद्रधनुष का हमें लगता है कि जो सामान्यतया धनुष है उसी तरह है। जो सामान्यतया धनुष होता है उनको प्रत्यंशा द्वारा बांधा जाता है दोनों छोर की ओर रस्सी से, तभी वो ऐसे मुड़कर रहता है। लेकिन जो आकाश में इंद्रधनुष होता है उनको किसी प्रकार से बांधा हुआ नहीं है, फिर भी वो राउंड में रहता है अर्धगोलाकार में। उसी तरह भगवान जब इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो हमें लगता है कि सामान्यतः मनुष्य की भांति लीला करते हैं या कार्य करते हैं, लेकिन भगवान का कार्य इसी प्रकार नहीं है। जन्म कर्म समय दिव्यम, भगवान का जो जन्म और कर्म दिव्य होता है। जिसी तरह धनुष को बांधने जैसा लगता है प्रतीत, उसी तरह भगवान ऐसे कार्य करते हैं कि हमें लगता है कि गुणों से आवृत हैं, तीन गुणों से, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जिस तरह इंद्रधनुष अपने आप टिका हुआ रहता है, उसी तरह भगवान इन तीन गुणों से परे इस भौतिक जगत के कार्य में रत रहते हैं। तो इसी तरह अगुणवान पुरुषो यथा, जो गुण के प्रभाव से भगवान हमेशा ऊपर रहते हैं, लेकिन सामान्यतः जो अज्ञानी लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि भगवान भी हमारी तरह है। प्राय लोगों का इसी तरह मानना है, और कहीं कहीं लोग ऐसे भी जानते हैं मानते हैं कि जो सभी देवी देवता है सब भगवान के समान है। मुख्यतया ब्रह्मा विष्णु महेश सभी एक ही साथ तुलना करते हैं, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु और महेश शिव जी, ब्रह्मा और शिव जी वो गुणों से आवृत रहते हैं और विष्णु भगवान जो साक्षात भगवान है वो इन गुणों से परे रहते हैं। तो इसका वास्तविक ज्ञान हमारे शास्त्र में प्रस्तुत किया गया है, तो इसका आज थोड़ी चर्चा हम करेंगे। पहले भक्तिनाथ ठाकुर भजन रहस्य में लिखते हैं, जीव में चार प्रकार के अनर्थ होते हैं। माया मुग्धस्य जीवस्य ज्ञेय अनर्थस्य शत्रुविध, हृदय दुर्बल्य अपराधो असत तृष्णा तत्व विभ्रम। चार प्रकार के जीव में जो माया मध्य इस माया भौतिक जगत में आते हैं जीव, चार प्रकार उनके अनर्थ रहते हैं। श्री भक्तिविनोद ठाकुर भजन रहस्य नाम के ग्रंथ में इसका वर्णन विस्तार से किया हुआ है। उसमें प्रथम है हृदय दौर्बल्य, अपराध असतृष्णा और तत्व विभ्रम। हृदय दौर्बल्य अपराध, हम जानते हैं कि अपराध होता है सभी जीवों में, उसमें मुख्यतया चार प्रकार के अपराध होते हैं, उसका भी वर्णन है। एक नामा अपराध जो हम रोज सुबह उच्चारण करते हैं, दूसरा वैष्णव अपराध, तीसरा है धाम अपराध, चौथा है सेवा अपराध। नामा अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध और सेवा अपराध, ये चार अपराध होते हैं। हर एक जीव में ये भौतिक जगत में आते हैं तो उनका ये स्वाभाविक अनर्थ रहता है। और असत तृष्णा, असत वस्तुओं में आसक्ति तृष्णा उत्पन्न करना, हर एक जीव में ये गुण पाया जाता है। और तीसरा है तत्व विभ्रम, जो आज के श्लोक में हम इस पर वर्णन करेंगे थोड़ा। तत्व विभ्रम, वास्तव में तत्व जो परम तत्व क्या है उसके बारे में कोई नहीं जानता, ये अनर्थ है जीव का। और चौथा है हृदय दुर्बल्य, अपना हृदय दुर्बलता है, वो निर्णय नहीं ले पाता है दुर्बलता के कारण कि हमें क्या करना है। तो इसी प्रकार इस भौतिक जगत में जो माया मुक्त जीवस्य, जो माया के बद्ध जीव है, उनमें चार प्रकार के अनर्थ रहते हैं। और उसमें भी जो तत्व भी ब्रह्म है उसका भी चार ब्रह्म है, सत्व तत्व पर तत्व साध्य साधन तत्व यो विरोधी विषय छेव तत्व विभ्रम च चतुर्विधम। उसमें प्रथम है साध्य साधन ब्रह्म, तत्व विभ्रम के चार विभाग है, उसमें है साध्य साधन ब्रह्म। साध्य हमें क्या प्राप्त करना चाहिए और किस साधन से वो प्राप्त किया जाए, उसका भौतिक जगत में भ्रम है, कोई ठीक से निर्णय नहीं ले पाता। दूसरा है भजन विरोधी विषय में भ्रम, हम जो भजन करते हैं उसके बाधा रूप क्या है, भजन में आगे बढ़ने के लिए जो हमें बाधा रूप होता है वो क्या है, उसमें भी भ्रम होता है कि ठीक से हम निर्णय नहीं कर पाते, क्योंकि जो हम भजन करते हैं उसमें बाधा रूप हमें भक्ति में प्रगति करने में बाधा क्या होती है, उसमें भी भ्रम होता है। प्राय हम देखे जाते हैं कि हमारे मन में जो आता है, हमारे जो अनुकूल होते हैं उनको ही हम ग्रहण करते हैं भक्ति मार्ग में आकर भी, और जो हमें पसंद नहीं है, हमें अनुकूल नहीं है, उसको हम प्रतिकार करते हैं, प्रतिकूल करते हैं। वास्तव में जो प्रतिकूल करने की वस्तु है भक्ति मार्ग में हमें आगे बढ़ने का सहायक होता है, लेकिन फिर भी उसमें भ्रम उत्पन्न होता है कि ये जीव का स्वभाव है, जो हमें अच्छा लगता है उसी को ही हम ग्रहण करते हैं और हमें जो अच्छा नहीं लगता उसे हम प्रतिकूल करते हैं। इसे भक्तों में देखा जाता है प्राय, वैष्णव भी ऐसा ही होता है, वैष्णव में जो संघ होता है जिनके साथ हमारा ज़्यादा संबंध रहता है उससे हम ज़्यादा बातें या ज़्यादा प्रेम करते हैं, और जिससे संबंध कम रहता है उसके साथ बात भी नहीं करते। यह विभ्रम है। मंदिर में आते हैं हम सेवा करने के लिए, लेकिन सेवा अपराध में कई अपराध हैं। भक्तिरसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी 32 प्रकार के सेवा अपराध बताते हैं। उसमें एक अपराध है मंदिर में जाने के लिए किसी सवारी का उपयोग करना, लेकिन हम प्राय सवारी होकर, क्योंकि शहर में है उसमें भी जब मंदिर के प्रांगण में जब जाते हैं तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो इस्कॉन का मंदिर है वैकुंठ धाम है, और वो बॉर्डर वैकुंठ है, लेकिन उसी में हम सवारी होकर जाते हैं, मंदिर के सामने जाकर अपना बाइक जो भी हो खड़ा करते हैं, उससे वातावरण भी दूषित होता है और साथ साथ में हमारे जो कहीं धुआं उड़ता है या रज उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, उससे मंदिर में भी वातावरण अशुद्ध होता है। इसका भी उदाहरण चैतन्य चरितामृत में है। श्री रघुनंदन आचार्य जो भगवान के परम भक्त थे, भगवान की ऐसी निष्ठा से और शुद्ध तरीके से सेवा करते थे, वो रघुनंदन आचार्य मुकुंद दत्त का पुत्र है, जो और जो भी वस्तु भगवान को अर्पण करते थे वो इतना फर्स्ट क्वालिटी का, सुपर क्वालिटी का और शुद्ध तरीके से वो प्रस्तुत करते थे, और कहीं कहीं दूर दूर से जो जो फेमस वस्तु है वो भगवान को चरणों में अर्पित करते हैं, कोई भी वस्तु हो। तो उसने एक बार कहीं दूर से नारियल, लीला नारियल जो तरोपा है वो मंगवाया, क्योंकि उस गांव का वो फेमस था, बहुत सुंदर और मीठा था वो नारियल। तो नारियल मंगवाया उनके सेवक के पास, वो लेकर आया और जब वो भगवान को अर्पण करने के लिए जा रहे थे उस गृह में, तो उनका हाथ उस दरवाजे पर लग गया, रघुनंदन आचार्य का। तो जैसे दरवाजे पर हाथ लग गया तो तुरंत वो अर्पण नहीं किए, तुरंत वापस दे दिया कि ये अशुद्ध हो गया, ये अभी भगवान को अर्पण नहीं करेंगे, क्योंकि इस दरवाजे पर जो लोग आते जाते उनका चरण का रस लगता है, उस रस के कारण उस अपवित्र हो गया उस नारियल, तो भगवान को अर्पण नहीं किए। कहीं दूर से मंगवाया था वो, बहुत सुंदर और मीठा मधुर था नारियल, फिर भी वो भगवान को अर्पण नहीं किए और दूसरा मंगवाया उधर से। तो इसी तरह सेवा अपराध, 32 प्रकार की सेवा अपराध रूप गोस्वामी ने भक्ति समर्थ सिंधु में वर्णन किए हैं। तो इस सेवा जो साध्य साधन के बारे में और भजन विरोध की विषय के बारे में हमें भ्रम होता है, वास्तव निर्णय हम नहीं कर पाते, क्योंकि ये जीव का अनर्थ का स्वभाव है। और स्वतः है प्रथम साध्य साधन भ्रम यज्ञ, दूसरा भजन विरोधी विषय में भ्रम, तीसरा स्वरूप तत्व भ्रम, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है उसके बारे में भी भ्रम होता है हमें। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, लेकिन कोई प्राय जानता नहीं कि हमारा वास्तविक स्वरूप भगवान की सेवा करना है, लेकिन भगवान की सेवा छोड़कर अन्य अन्य हम सेवा करते हैं, तो वह भी भ्रम है। और चौथा है परतत्व भ्रम, वास्तव में परतत्व, परम तत्व कौन है उसके बारे में भी भ्रम है, नहीं जानते। भ्रम मतलब निर्णय नहीं ले पाना ठीक से, उसको भ्रम कहा जाता है। तो इस पर तत्व, जो परम तत्व भगवान है, उनके बारे में भ्रम प्राय देखा जाता है इस भौतिक जगत में। जो प्राय इस भौतिक जगत में भगवान कार्य करते हैं, तो हम जानते हैं भगवान कृष्ण से बलराम जी का आविर्भाव होता है, फिर बलराम जी से चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह से महाविष्णु, महाविष्णु से तीन विष्णु, गर्भदक्षाई, क्षीरदक्षाई, कारुणदक्षाई, इसी तरह भगवान इस सृष्टि में कार्य करते हैं। और साथ साथ में भगवान 6 प्रकार के अवतार भी धारण करते हैं, इस एक लीला अवतार, दूसरा गुणावतार, तीसरा पुरुषावतार, चौथा सक्तावेश अवतार, पांचवा मनवंता अवतार, छठा युगा अवतार। तो उसमें जो गुणावतार धारण करते हैं उसमें माना जाता है कि भगवान विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं और साथ साथ में शिव भी, जो गुण के आधार पर भगवान अवतार धारण करते हैं। तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है शिव जी, रजोगुण के अधिष्ठाता देवता है ब्रह्मा जी, और सत्वगुण के अधिष्ठाता देवता है भगवान विष्णु। तो इसका वर्णन श्री जीव गोस्वामी परमात्मा संदर्भ में विस्तार से वर्णन करते हैं, और उसमें श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 23 से प्रमाणित करते हैं कि भगवान किस तरह इस भौतिक जगत में गुण धारण करके शिव जी, ब्रह्मा आदि का रूप धारण करते हैं। श्रीमद् भागवतम देख सकते हैं, श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय दो श्लोक क्रमांक 23। इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सत्वम रजत तम इति प्रकृते गुणस्ते युक्त पर पुरुष एक यह यश धत्ते। युक्त जो परम पुरुष है वो एक ही है, लेकिन यश धत्ते इस भौतिक जगत में धारण करते हैं, रूप धारण करते हैं। स्थिति आदय हरि विरंची हर इति संज्ञा। हरे भगवान विष्णु, विरंची ब्रह्मा जी, हर इति संज्ञा शिव जी, इस प्रकार ये तीन रूप धारण करते हैं। हम ये गुण अगुणवान पुरुष यथा शब्द पर कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए थोड़ा। श्रेयांशी तत्र खलु सत्यम नृणाम छु। इस प्रकार भगवान विष्णु, विरंची ब्रह्मा जी और हर शिव जी इति संज्ञा, इस प्रकार रूप धारण करते हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम 1.2.23 में हुआ है। तो भगवान इस कार्य को इस भौतिक जगत में तीन गुणों के लिए गुण प्रधान अधिष्ठ देव में प्रकट होते हैं। तो प्राय जो शिव को मानते हैं या ब्रह्मा जी को मानते हैं, प्राय भौतिक जगत में ज़्यादा शिव को ही ज़्यादा लोग मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तो ये तर्क दे सकते हैं तो वही भगवान विष्णु है जो ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों, तो उसमें अंतर क्या है तीनों में, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में और शिव जी में। ये तीनों की जो भी कोई एक पूजा करे तो तीनों की पूजा हो जाती है या अर्चना हो जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। इस बात को फिर से प्रमाणित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने स्कंद 12.5.1 में भी इसी श्लोक का प्रूफ, या जीव गोस्वामी ने फिर से इस बात को प्रमाणित करने के लिए दूसरा भी एक श्लोक दिया है। श्री शुक उवाच 12.5.1 में स्कंद भागवतम स्कंद 5 स्कंद 12 पांचवा अध्याय एक श्लोक क्रमांक 1 श्री शुक उवाच, अत्र अनुगणयते अभिक्षणम विश्वात्मा भगवान हरि अस्य प्रसादे ब्रह्मा रुद्र कोद समुद्भव। वही भगवान विश्वात्मा भगवान हरि यश्य प्रसाद, उनकी प्रसाद के द्वारा या उनकी इच्छा के द्वारा ब्रह्मा रुद्र प्रकट होते हैं, और रुद्र क्रोध समुद्भव, क्रोध के कारण जब पृथ्वी का इस भौतिक जगत का विनाश करना होता है तब क्रोध धारण करके शिव जी इस तमोगुण को धारण करके इस भौतिक जगत का विनाश करते हैं। तो इसी प्रकार भागवतम में ये दो श्लोक के द्वारा ये प्रमाणित करते हैं कि जो भगवान विष्णु है वही ब्रह्मा और शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं गुण के आधार पर। लेकिन इसी बात को लेकर प्रायः लोग अन्य अन्य देवताओं के अन्य अन्य लोगों की पूजा करते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी फिर से इस बात को खंडन करने के लिए जीव गोस्वामी परमात्मा संदर्भ में कहते हैं श्लोक श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 24 जो 23 नंबर का श्लोक का ही जवाब है। पृथ्वीयो दारुणो धूम तस्मात् अग्नि त्रयमय तमस्तु रजस तस्मात् सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। प्रातः जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, नींद आने लगा, जिस प्रकार उदाहरण देते हैं पृथ्वी, पृथ्वी का विकार है लकड़ी काष्ठ दारुण, और दारुण का विकार है धुआं, और धुआं का विकार है अग्नि। पृथ्वी से निकला हुआ है लकड़ा दारुण या काष्ठ, और उसमें से ही धुआं निकलता है और उसमें से ही अग्नि प्रकाशित होता है। त्रयमय, ये तीनों चीज उसी में से निकलता है, पृथ्वी का ही विकार है, लेकिन अंतर है तीनों में। दारुण जो लकड़ा है उससे श्रेष्ठ है धुआं, धुआं क्यों श्रेष्ठ है, धुआं अन्य जगहों पर फैल सकता है, लकड़ी एक ही जगह पर पड़ा रहता है तो अपना विस्तार नहीं कर सकती, लेकिन लकड़ी से विस्तार होता है, विकार होता है, श्रेष्ठ माना जाता है धुआं उससे निकलता है वो, क्योंकि धुआं श्रेष्ठ है क्योंकि वो विस्तार होता है उनका, अन्य अन्य जगहों पर वो फैलता है। और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, अग्नि क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि अग्नि से यज्ञ होता है और यज्ञ से भगवान को प्रसन्न किया जाता है और भगवान का दर्शन प्राप्त किया जाता है। तो तमस्तो रजस्तव सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, तो ये तीन गुणों के साथ उनकी तुलना की है। जो लकड़ी है, काष्ठ है, वो तमोगुण है, और धुआं है वो रजोगुण है, और जो अग्नि है वो सत्वगुण है। सत्वगुण के द्वारा यज्ञ द्वारा जो अग्नि है उसके यज्ञ द्वारा भगवान को संतुष्ट किया जाता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर सत्वगुण धारण करे तो ब्रह्म यद ब्रह्म दर्शनम, तो वो व्यक्ति ब्रह्म का दर्शन या भगवान का दर्शन कर सकता है। लेकिन जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, जिस तरह ब्रह्मा जी की कोई देव पूजा करता है, तो वो सत्वगुण में नहीं आ सकता है, क्योंकि उनका आराध्य देव है और रजोगुण का अधिष्ठाता देवता है। तो उसका सत्वम जो परम लक्ष्य है जीव का, वो सत्वगुण से भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है। और साथ साथ में जो शिव जी की उपासना करते हैं वो उससे भी निकृष्ट माना जाता है, वो लकड़ी के समान होता है तमोगुण। तो जो शिव जी की आराधना करते हैं वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो तमोगुण में रहता है प्राय। जो तमोगुण में व्यक्ति होता है वो सत्वगुण जो भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है, उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रकार जो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के आधार पर ये भगवान इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं, लेकिन उनका कार्य करने का जो गुण धारण करते हैं उसमें मुख्य रूप से जो भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में आते हैं, तो हमें लगता है कि वो हमारी तरह ही कार्य करते हैं। प्राय देखा जाता है कभी कभी वो ऐसा नाटक भी करते हैं कि भ्रम में प्राय लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। और हमें कई पहले सुने हैं कि ब्रह्मा जी भ्रम में पड़ गए, शिव जी भी भ्रम में पड़ जाते हैं, और देवी सती भी भ्रम में पड़ गई, क्योंकि भगवान का ऐसा कार्य ही है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रम में डाल देते हैं। यहाँ तक कि बलराम जी भी भ्रम में पड़ जब गौचारण लीला में जब ब्रह्मा जी ने बछड़े और को हरण किया, वाल बालों और बछड़े को, तब वो बात बलराम जी को भी पता नहीं था। अंत में बलराम जी स्वीकार करते हैं कि मेरा जो मति है उनको भ्रम करने के लिए भगवान की योग माया आपकी है, या कोई अन्य किसी की कोई शक्ति नहीं है कि मुझे भ्रमित करे। इसी तरह भगवान सभी को भ्रम में डाल देते, ऐसा वो कार्य ही करते हैं। अगुणान, ये गुण के परे होकर भी, लेकिन हमें लगता है कि गुण के अधीन रहकर वो कार्य करते हैं। जब पांडवों का लाक्षाग्रह में गए वो, तब उनको जलाने का प्रयास किया दुर्योधन द्वारा, और वो लाक्षाग्रह जलकर भस्म हो गया। और साथ साथ में ये भी बात फैल गई कि पांडवों और माता कुंती सहित पांचों पांडव वो लाक्षाग्रह में जलकर भस्म हो गए। जब सारे हस्तिनापुर में ये बात फैल गई और दुर्योधन शकुनि आदि सब तो उत्सव मनाने लगे, और भीष्म पितामह विदुर जी आदि शोक में डूब गए, तो उनके प्रिय पांडवों का मृत्यु हो गया और लाक्षाग्रह में जलकर भस्म हो गए। उसी बात को जब मथुरा में भगवान कृष्ण और बलराम जी ने सुना, तब वो बात सुनकर वो शोक प्रकट करने के लिए हस्तिनापुर पधारे, बलराम और कृष्ण दोनों हस्तिनापुर पधारे, और वहाँ विदुर जी, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनि आदि सभी बैठे थे। उनके सामने आकर शोक व्यक्त करने लगे भगवान कृष्ण, और साथ साथ में अपने आंखों से आंसू भी बहाने लगे। जिस तरह कोई भौतिक कार्य करते हैं और शोक सभा में जाते हैं, और जिस उसी तरह ठीक वैसे ही आचरण भगवान ने वहाँ पर जाकर किए कि हमारे प्रिय पांडव और माता कुंती जो उनकी बुआ लगती थी, वो पांच छः को छः वो उस लाक्षाग्रह में जलकर भस्म हो गए। इसी तरह बहुत शोक किया भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने। फिर वहाँ से निकले, कुछ दिनों तक वहाँ हस्तिनापुर रहे, और रहने के बाद जब पाँच साल में राजा द्रुपद ने एक यज्ञ का आयोजन किया, उस यज्ञ में जो शर्त रखा था हम सब जानते हैं कि जो इस पानी में प्रतिबिंब पड़ता है उस पानी को देखकर उस मछली का जो आँख को छेदन करेगा वही द्रौपदी के साथ विवाह कर सकता है, ऐसा वो शर्त था राजा द्रुपद का। तो उस बड़ा आयोजन रखा था उस 5 साल में राजा द्रुपद ने, और सारे भारत भर से, सारे विश्व से कई राजा उस सभा में आए थे उस भाग लेने के लिए उसमें, और कई धनुर्धन भी आए थे। और साथ साथ में उसी नगर में जब निवास कर रहे थे उस पांडव, क्योंकि वो विदुर जी के संकेत के द्वारा वो वास्तव में वो लाक्षाग्रह में भस्म नहीं हुए थे, हम जानते हैं, वो तो सुरन बनाकर विदुर के संकेत के द्वारा वो वहाँ से निकल गए थे। और विदुर जी ने संकेत ऐसे मलेश भाषा में दिया था कि जिस तरह जंगल में आग लगता है तो सर्वप्रथम सुहा अपने बिल से निकलकर भाग जाता है, उसी तरह आप निकलकर भाग जाना, क्योंकि ये षड्यंत्र रचा गया हुआ है दुर्योधन के द्वारा। तो इसी बात को महाराज युधिष्ठिर पूर्ण रूप से समझकर उस लाक्षाग्रह के सुरंग के द्वारा वो निकल गए थे और उस 5 साल देश में निवास कर रहे थे। तो इस यज्ञ का आयोजन जब देख सुना उस पांडवों ने, महाराज युधिष्ठिर ने, तब उस यज्ञ में भाग लेने के लिए वो भी गए, 500 भाई, महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 500 गए। को गांव गांव की वेशभूषा थी, वो राज भी वेशभूषा नहीं, क्योंकि वो तो गुप्तवास कर रहे थे। तो इस सभा में गए और वहाँ बड़े बड़े राजाओं पधारे थे, और साथ साथ में उसी सभा में भगवान कृष्ण और बलराम भी आए हुए थे। इस सभा में प्रथम मिलन पांडवों का और भगवान कृष्ण का होता है। महाभारत में वर्णन है कि प्रथम मिलन पांडवों का, अर्जुन से, युधिष्ठिर महाराज से, भगवान कृष्ण का, ये प्रथम मिलन है। पहली बार देखते भगवान कृष्ण और कृष्ण पांडवों को देखते और पांडव भगवान कृष्ण को देखते, प्रथम मिलन। तो वहाँ बलराम और कृष्ण भी आए थे और ये पांडव भी आए थे और अनेक अनेक राजाओं वहाँ उपस्थित थे। जब इस शर्त को प्रारंभ किया तो कहीं धनुर्धर आकर चले गए, क्योंकि वो घूमती हुई मिसली को आँख को छेदन करना कोई आसान बात नहीं है, वो भी पानी में प्रतिबिंब देखकर, तो कोई नहीं कर पाया। फिर अर्जुन गए इस कार्य को संपन्न करने के लिए। तो अर्जुन तो जानते हैं हम, वो महाधुरंधर गांडीवधारी है, तो उसने उस कार्य को पूर्ण कर दिया। जब पूर्ण करके वो 500 भाई मिल रहे थे, तब बलराम जी भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, ये हमें लगता है कि ये पांडव जैसा दिखता है 500 भाई, ये अर्जुन जो अर्जुन है, ये गांडीवधारी धनुष, ये इनके वाला अलावा ये कोई कार्य नहीं कर सकता है, और जो उनके बीच में खड़ा है बड़ा, वो भीम जैसा दिखता है, और जो दूसरा है सबसे ज्येष्ठ बड़े, वो युधिष्ठिर महाराज जैसा दिखता है, कहीं ये पांडव तो नहीं है, ऐसा बलराम कहते हैं भगवान कृष्ण से। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए जवाब नहीं देते, फिर दूसरी बार कहते हैं कि हमें वास्तव में ये पांडव ही दिखते हैं, वही लगता है कि हमारे युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, सहदेव है, निकुल है, नकुल है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हाँ भैया, ये वही है। तब बलराम जी कहते हैं कि तुम जो हस्तिनापुर आंखों आंसू बहा रहे थे, वो क्या तुम्हारा नाटक था? जिस तरह तुम्हें कुछ पता ही ना हो, उसी तरह तुम आंसू बहा रहे थे, तुम्हें तो मालूम था ये जिंदा है, जीवित है, फिर भी आंसू बहा रहे थे। इसी तरह बलराम जी कई तर्क देते हैं, कहते हैं कि मुझे भी आपने भ्रम में डाल दिया। तो इसी प्रकार भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो ऐसा कार्य करते हैं कि ऐसा उनका लीला होता है कि सभी को भ्रम में डाल देते हैं, कोई भी नहीं समझ पाते हैं। और मूर्ख की तो बात ही छोड़िए, जो विद्वान भी भ्रम में पड़ जाते हैं तो मूर्ख तो की बात। तो इस प्रकार बलराम जी भी दो प्रकार मोहित होते हैं, एक ब्रह्म विमोहन लीला में और इस बार इस प्रसंग में, जो ब्रह्म बलराम जी को भी पता नहीं रहता है। तो इसी प्रकार भगवान जब इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं तो लगता है कि हमें ये गुणान ये गुण के द्वारा कार्य करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान इन गुणों से परे होते हैं, हमारी इंद्रियों के परे होते हैं, उनको हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा अगर जिस पर हो या गुरु की कृपा हो तो वास्तव में उसे वही उनको समझ पाते हैं। लेकिन सभी का मूल स्रोत भगवान कृष्ण है। वास्तव में भगवान कृष्ण से सब आविर्भूत है। भौतिक जगत हो या ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जो भी कुछ हो, कहीं अवतार भी हो, वास्तव इसका मूल है भगवान कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण ब्रह्मा जी कहते हैं अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों का कारण भगवान कृष्ण है। और साथ साथ में नारायण उपनिषद में इसी बात को स्पष्ट करने के लिए श्री जीव गोस्वामी ने एक श्लोक कोट किया है, नारायण परम ब्रह्म तत्व नारायण परम। देखा जाए तो वास्तव भौतिक जगत में लगता है कि नारायण ही परम तत्व है, नारायण ही परम है, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र में अन्य वर्णन भी है, ऋतम सत्य परम ब्रह्म पुरुषम कृष्णम पिंगलम। ऋतम शास्त्रों में सत्य सत्य प्रकाशित किया गया है कि परम ब्रह्म यदि कोई है पुरुष है तो वह कृष्ण जो श्याम सुंदर है, वही परम पुरुष भगवान कृष्ण है, जो वास्तविक सभी के स्रोत है। नारायण का भी स्रोत भगवान कृष्ण है। अलग अलग भौतिक जगत का कार्य करने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। कभी कभी तमोगुण धारण करके शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं, कभी कभी ब्रह्मा के रूप में रजोगुण धारण करके प्रकट होते हैं, कभी कभी सत्वगुण धारण करके विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वास्तव में मूल है भगवान कृष्ण। इसी बात को सत्य करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने गंगा के तट पर और एक उदाहरण पेश करके प्रस्तुत किया है। तो प्राय हम भक्त जानते हैं, जब इस गंगा के तट पर एक महासभा लगी हुई थी, उसमें प्रश्न उठा कि वास्तव में भगवान की पूजा करने के लिए योग्य कौन है, वास्तव में किसकी पूजा होनी चाहिए, तो कोई निर्णय पर नहीं आ रहे थे। उसी भ्रम के कारण, जो पर तत्व भ्रम है, उस बड़े बड़े विद्वानों की सभा लगी हुई थी, उसमें भी भ्रम चल रहा था कि वास्तव में किसकी पूजा होनी चाहिए। कोई कहते हैं कि शिव जी की पूजा होनी चाहिए, कोई कहते हैं ब्रह्मा जी की, और कोई कहते हैं विष्णु की, लेकिन कोई निर्णय पर नहीं आ रहे थे। तभी निर्णय लिया गया कि वहाँ भृगु ऋषि भी वहाँ उपस्थित थे, तो उनको कहा गया कि आप इसका क्या कहते हैं उसको, समाधान, आप उसका समाधान निकालिए और आप परीक्षा लीजिए ये तीनों में सर्वश्रेष्ठ और किसकी पूजा होनी चाहिए। तो समाधान के लिए भृगु ऋषि को सुना गया और उनको परीक्षा किसकी लेनी थी, ब्रह्मा विष्णु और महेश की। और वो भृगु ऋषि जो साधु होते हैं, जो अभय होते हैं, उनको किसी का डर नहीं रहता, कोई भी निर्णय लेने में या परीक्षा लेने में तुरंत तैयार हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता भगवान के से भी भगवान का भक्त श्रेष्ठ है। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि तैयार हो गए और सर्वप्रथम हम जानते हैं कि वो शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी को सत्यलोक में जाकर जब भृगु ऋषि वहाँ गए, तब ब्रह्मा जी का तो पुत्र है भृगु ऋषि, तो प्रणाम नहीं किए, तो प्रणाम नहीं किए तो ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया, रजोगुण में है क्रोध आया, लेकिन वो का बच्चा है ना, मेरा आखिर पुत्र ने प्रणाम नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे बात नहीं किया। तो भृगु ऋषि समझ गए कि वास्तव में ये श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है, ये पूंजवा योग्य नहीं है। तो वहाँ से वो निकल कर गए सीधे कैलाश पर शिव जी के वहाँ। तो जहाँ शिव जी के वहाँ गए तो शिव जी भृगु ऋषि को देख कर, उनका भाई है, तो उनको दौड़ कर आलिंगन करने के लिए दौड़े। तब भृगु ऋषि ने कहा दूर हटो, आप तो भस्म लगाए हुए हो, शमशान में निवास करते हो, आप मुझे आलिंगन करोगे, दूर हटो, मैं तो ब्राह्मण हूँ, तुम तो तमोगुण धारण करके हमेशा भस्म लगाए रहते हो, तुम्हारे गले में सर्प है, तो तुम दूर हटो, मुझे आलिंगन नहीं कर सकते। जैसा ही सुना शिव जी ने, तुरंत वो क्रोधित हो गए, उनको मारने के लिए दौड़ पड़े त्रिशूल लेकर भृगु ऋषि को। तो भृगु ऋषि वहाँ से भागे। जो ब्रह्मा जी से परीक्षा लिया उससे थोड़ा कठिन परीक्षा लिया शिव जी का, तो वहाँ से शिव जी क्रोधित हो गए और उनको मारने के लिए तैयार हो गए। तो भृगु ऋषि वहाँ से भागे और निर्णय कर लिया कि ये भी पूर्ण रूप से श्रेष्ठ नहीं है, और गए वहाँ जहाँ वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और माता लक्ष्मी जी उनके चरण सम्मान कर रही थी और भगवान योग निद्रा में शयन कर रहे थे।
और सीधा जाकर उनके लात पर, उनके छाती पर लात लगा दिया भृगु ऋषि। ये तीसरा परीक्षा। और जैसे ही लात मारा तो भगवान विष्णु उठ गए योग निंद्रा से, और उठकर खड़े हुए, और खड़े होकर भृगु ऋषि के चरणों में गिरकर उनका शरण संवारने लगे और कहने लगे, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण, आपका शरण इतना कोमल है और मेरा छाती जो है इतना कठोर है, आपने जो लात मारा और लात के कारण आपके शरण में जो कष्ट हुआ उससे मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं उनको समान रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मेरा धर्म है ब्राह्मणों का सेवा करना, सत्कार करना, आदर करना, लेकिन आप आए वो मुझे पता नहीं था, मैं सोया हुआ रहा, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए कि आपके शरण में कष्ट लगा, उसके लिए अभी भी मुझे क्षमा कीजिए। इसी बात को जब भृगु ऋषि ने सुना तब वो निर्णय पर आ गए कि नहीं, वास्तव में कोई पूंजा योग्य है तो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण है, क्योंकि सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण ही है। तो इसी प्रकार सभी गुणों में आदिन लगते हैं, लेकिन वास्तव में इन गुणों से परे है भगवान विष्णु, जो पुरुष अगुणान पुरुष है, यथा पुरुष है। उसी तरह इस भौतिक जगत में हमें लगता है कि जो इंद्रधनुष आकाश में दिखता है वो लगता है कि रस्सी से बंधा हुआ है, लेकिन वास्तव में बंधा हुआ नहीं है, वो अपने आप टिका हुआ है। उसी प्रकार ये भगवान भी इस भौतिक जगत में अवतरण धारण करते हैं तो हमें लगता है कि गुण के अधीन है, लेकिन वास्तव में ये गुणों से परे होते हैं, और सबका स्रोत भगवान कृष्ण ही है। इसी को कहते पर तत्व ब्रह्म, जो परम तत्व है उसके बारे में ब्रह्म होना। श्री भक्तिविनोद ठाकुर महाराज इस बात को विस्तार से वर्णन किया भजन रहस्य में कि जो परम तत्व वास्तव में जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमारी निष्ठा भक्ति में नहीं होगी, क्योंकि प्राय हम भ्रम में रहते हैं कि हम कोई भी थोड़ा सा रुकावट है, कोई भी कारण होता है तो हम डिगमगा जाते हैं कि वास्तव में ये भगवान कृष्ण है, वास्तव में जो हम साधन कर रहे हैं वो सही है, वास्तव में जो हम भजन करते हैं वो सही है या गलत है, उस भ्रम लगता है, हमें शंका होने लगती है। लेकिन जब तक ये बात हम पूर्ण रूप से नहीं, पर तत्व के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमारा भजन है वो निष्ठा से या पूर्ण रूप से ठीक तरह से या निष्ठापूर्वक नहीं हो पाता। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जो भजन का रहस्य है उस रहस्य को समझाने के लिए इसी बात को वहाँ वर्णन किए, कई सारे उसमें वर्णन, असत तृष्णा है उनका भी चार विभाग है, जिस तरह ये अलग अलग विभाग है उसी प्रकार। तो हमें इस प्रकार सावधानीपूर्वक भजन में निष्ठा लाने के लिए पर तत्व के बारे में जानना चाहिए, और अनेक अनेक ग्रंथों में विस्तार से वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार इस जो मैंने कहा इस बात को अगर देखना है तो शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में प्रथम जो कहा, पहला स्कंद दूसरा अध्याय 23 नंबर श्लोक, उसका ही जवाब 24 नंबर श्लोक में दिया है, जिस तरह दारुण का उदाहरण, और उसी बात को स्पष्ट करने के लिए 12वां स्कंद का 5वां अध्याय का प्रथम श्लोक देखिए, और साथ साथ में परमात्मा संदर्भ है जो जीव गोस्वामी द्वारा सर संदर्भ में, उसमें भी विस्तार से वर्णन है। तो इसी प्रकार हम श्रवण करेंगे या शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो हमारा निष्ठा भगवान के प्रति वास्तव में जो परम तत्व है उसमें निष्ठा उत्पन्न होता है। ठीक है, मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आदियोग प्रभु से पूछ सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की गीता गौर प्रेमानंद।